एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाएंगे जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि हमारी इंसानियत की समझ को भी जैसे झकझोर कर रख दिया। अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन की गोलाकार की पिलागो, ये नाम सुनते ही एक भारीपन सा महसूस होता है ना।
बिल्कुल, ये कोई हल्की फुल्की किताब तो बिल्कुल नहीं है। ये 20वीं सदी का एक बहुत ही काला सच है। सोवियत संघ का जो लेबर कैंप सिस्टम था उसका एक ऐसा दस्तावेज है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इसे पढ़ना हाँ हिम्मत का काम तो है, लेकिन शायद आज के समय में ये और भी जरूरी हो गया है।
हाँ, क्योंकि ये सिर्फ सोवियत रूस की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे सत्ता बेलगाम हो सकती है, कैसे कोई विचारधारा आपको अंधा बना सकती है, और कैसे एक पूरा का पूरा सिस्टम लाखों लोगों को पीस सकता है।
बिल्कुल,
जब हम आज दुनिया में देखते हैं आजादी पर, सरकार की ताकत पर, सच बोलने की कीमत पर बहस, तो सोल्जनित्सिन की आवाज सुनना मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाता है।
सही बात है। तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं इस भारी भरकम 3 वॉल्यूम में फैली किताब के सार को समझने की। देखते हैं कि इसे लिखने वाले कौन थे, किताब असल में क्या कहती है, और सबसे जरूरी, आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं।
तो शुरुआत करते हैं लेखक से। अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन, ये नाम अपने आप में ही एक वजन रखता है। ये सिर्फ एक लेखक नहीं थे बल्कि वो खुद उस इतिहास के गवाह थे, भुक्तभोगी थे जिसके बारे में उन्होंने लिखा।
बिल्कुल सही कहा। सोल्जनित्सिन, जिनका जीवन काल 1918 से 2008 तक रहा, उनको हम 1970 के साहित्य नोबेल प्राइज विनर के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान वो इसी किताब से जुड़ी है। और सोचिए, वो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सेना के एक सम्मानित कैप्टन थे। 2 बार उन्हें सम्मान भी मिला था, लेकिन युद्ध खत्म होते होते 1945 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
और वजह सुनकर तो हैरानी होती है। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने एक दोस्त को खत लिखा था और उसमें स्टालिन का मजाक उड़ा दिया था, मूंछों वाला आदमी कह दिया था। बस इतनी सी बात पर 8 साल गुलाग की सजा।
हाँ, 8 साल लेबर कैंप, और यहीं से उनकी वो यात्रा शुरू हुई जिसने उन्हें गुलाग आर्किपेलागो लिखने की वो नैतिक और अनुभवात्मक शक्ति दी। उन्होंने वो सब कुछ खुद झेला, मॉस्को की वो कुख्यात लुब्यंका जेल, वहां पूछताछ की यातनाएं, फिर अलग अलग कैंपों में जैक बनकर रहना, जैक यानी कैदी, हाड़ तोड़ मेहनत, ठंड, भूख। वो सिर्फ घटनाएं नहीं लिख रहे थे, वो अपनी और लाखों दूसरों की आपबीती सुना रही थी।
और यही बात उन्हें खास बनाती है, है ना? पहला तो ये कि वो खुद गवाह थे, दूसरा रिहाई के बाद उन्होंने इतना बड़ा खतरा उठाया, 200 से ज्यादा साथी कैदियों के अनुभव गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए, वो जैसे लाखों बे आवाज लोगों की आवाज बन गई।
बिल्कुल। और तीसरा, उनकी लिखने की शैली कमाल की थी। वो इतिहासकार की तरह तथ्य जुटाती थी, एक पत्रकार की तरह जांच पड़ताल करती थी, और एक उपन्यासकार की तरह इंसानी भावनाओं की गहराई में उतरती थी। उन्होंने खुद इसे साहित्यिक जांच में एक प्रयोग कहा। ये एक बिल्कुल नई विधा थी। ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, ये सच्चाई को महसूस कराने का एक तरीका है।
तो ये किताब गुलाग आर्किपेलागो, आखिर ये है क्या चीज? नाम ही बड़ा अनोखा है, आर्किपेलागो, द्वीप समूह।
हाँ, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, सोल्जनित्सिन के लिए सोवियत संघ में जो हजारों लेबर कैंप फैले हुए थे, वो कोई अलग अलग जेलें नहीं थीं, वो एक विशाल अदृश्य द्वीप समूह थे, गुलामी के द्वीप, जो एक ही क्रूर सिस्टम से जुड़े हुए थे। और ये द्वीप कहाँ थे? वो सोवियत समाज के कथित आजाद समुद्र में बिखरे हुए थे। ज्यादातर लोगों को ये दिखते नहीं थे, या शायद वो देखना नहीं चाहते थे।
तो ये किताब असल में 1918 से 1956 तक जो सोवियत राज की आतंक चला, उसका एक महाग्रंथ है। इसमें वो गुप्त पुलिस, चेका, एनकेबीडी, केजीबी, फिर वो अंधाधुंध गिरफ्तारियां, पूछताछ के वो वैशी तरीके, और सबसे बढ़कर उन लेबर कैंप्स का रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है जहां लाखों करोड़ों लोग खपा दिए गए।
हाँ, और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद तर्क ये था कि ये जो गुलाग सिस्टम था, ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं थी, या सिर्फ स्टालिन की क्रूरता का नतीजा नहीं था। सोल्जनित्सिन कहती हैं कि ये उस मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा का जरूरी और तार्किक परिणाम था जिस पर 1917 में सोवियत राज्य की नींव रखी गई थी। उनके हिसाब से आतंक की जड़ें लेनिन के समय से ही मौजूद थीं।
ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। मतलब ये कि एक विचारधारा जो आदर्शवादी दिखती थी वही इस पूरी तबाही की जड़ थी।
हाँ, यही सोल्जेनित्सिन का मुख्य तर्क है। वो कहती हैं कि जब कोई विचारधारा ये मानने लगती है कि एक काल्पनिक बेहतर भविष्य के लिए किसी भी साधन का इस्तेमाल जायज है और जो लोग रास्ते में आए उन्हें दुश्मन या कचरा मानकर खत्म किया जा सकता है, तो फिर गुलाग जैसे सिस्टम का बनना लगभग तय हो जाता है। ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अच्छे इरादों से शुरू हुई चीजें भी भयानक मोड़ ले सकती हैं।
किताब के बारे में सुनाएं कि ये 3 खंडों में है, 7 हिस्सों में बटी है। ये एक तरह से कैदी बनने से लेकर कैंप के जीवन और उसके बाद तक की यात्रा है। क्या हम इसके मुख्य पड़ावों को थोड़ा समझ सकते, मतलब बिना बहुत ज्यादा विस्तार में जाए?
हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी किताब को यहाँ बताना तो खैर मुमकिन नहीं है, पर हम उसकी यात्रा के जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें छू सकते हैं। पहला हिस्सा है गिरफ्तारी और पूछताछ का। सोल्जेनित्सिन बताती हैं कि कैसे लोगों को अक्सर रात के अंधेरे में बिना किसी खास वजह के उठा लिया जाता था। वो कुख्यात अनुच्छेद 58 जो था वो इतना लचीला था कि सरकार के खिलाफ किसी भी गतिविधि का शक हो, यहाँ तक कि एक मजाक सुनाने पर भी आप देशद्रोही करार दिए जा सकते थे।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और पूछताछ, वो तो सुनने में आता है कि टॉर्चर का ही दूसरा नाम था।
बिल्कुल, मकसद सच जानना नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि इंसान को तोड़कर उससे झूठा इकबालिया बयान हासिल करना था। तरीके क्या थे? नींद न देना, भूखा रखना, पीटना, धमकाना, मनोवैज्ञानिक खेल खेलना, ये सब बहुत आम था। फिर शुरू होती थी कैंप तक की यात्रा। कैदियों को जानवरों की तरह मालगाड़ियों में, जिन्हें स्टॉलिपिन कारें कहा जाता था, उनमें ठूंसकर हफ्तों महीनों तक अनजान जगहों पर भेजा जाता था। रास्ते में ही भीषण गर्मी, ठंड, भूखमरी, बीमारी से कई मर जाते थे। सोल्जेनित्सिन इसे सीवेज डिस्पोजल सिस्टम कहती हैं, जो इंसानों को ठिकाने लगाता था।
ओह, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सब सोचकर। और फिर कैंप पहुंचकर
फिर आता था गुलाग का असली चेहरा, विनाशकारी श्रम शिविर। सोचिए, साइबेरिया की बर्फीली ठंड में लकड़ी काटना या रेगिस्तान में नहरें खोदना, खदानों में काम करना, रोज 12-14 घंटे या उससे भी ज्यादा की कमर तोड़ मेहनत, खाना ना के बराबर, गार्डों का आतंक अलग, और कैदियों के बीच भी अपनी एक क्रूर दुनिया थी जहां ब्लाटनी यानी जो पेशेवर अपराधी होते थे वो अक्सर राजनीतिक कैदियों पर हुकूमत चलाते थे और प्रशासन की शह पर।
लेकिन क्या इस नरक में भी इंसानियत बची रहती थी? सोल्जेनित्सिन इस बारे में क्या कहते हैं? क्या कोई उम्मीद थी?
यही किताब का सबसे गहरा हिस्सा आता है, जिसे वो कहती हैं आत्मा और कंटीले तार। सोल्जेनित्सिन ये सवाल पूछती हैं कि क्या ऐसी हालत में अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बचाए रखना मुमकिन है? वो दिखाती हैं कि कैसे कुछ लोग टूट गए, मुखबिर बन गए, दूसरों का हक छीन लिया, लेकिन वो ये भी दिखाती हैं कि कैसे इसी चरम पीड़ा में कुछ लोगों ने असाधारण नैतिक साहस दिखाया, दूसरों की मदद की और अपनी इंसानियत को मरने नहीं दिया। यहीं से उनका वो मशहूर विचार आता है कि अच्छाई और बुराई की जो रेखा है वो हर इंसान के दिल से गुजरती है।
और सजा पूरी होने के बाद भी शायद आजादी नहीं मिलती थी?
अक्सर नहीं, बहुत सारे लोगों को निर्वासन में भेज दिया जाता था, साइबेरिया या कजाकिस्तान के दूरदराज गांवों में। वहां वो पुलिस की निगरानी में रहते थे, उनके अधिकार बहुत सीमित थे, मतलब गुलाग की पकड़ कैंप की दीवारों से बहुत आगे तक फैली हुई थी। किताब का अंत स्टालिन की मौत के बाद के दौर का वर्णन करता है, कैंपों में जो विद्रोह हुए उनका जिक्र है, और फिर वो अधूरा पुनर्वास जहां सरकार ने माना कि कुछ सजाएं गलत थीं पर पूरे सिस्टम को कभी गलत नहीं ठहराया। ये किताब एक तरह से अपील है कि रूस अपने इतिहास का सामना करे।
ये तो एक भयानक तस्वीर है। इस पूरी कहानी से सोल्जेनित्सिन कौन से बड़े संदेश देना चाहते हैं, मतलब क्या मुख्य विषय हैं जो उभर कर आते हैं?
देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जोरदार संदेश तो यही है कि विचारधारा जो है वो अत्याचार का इंजन बन सकती है। जैसा हमने पहले भी बात की, सोल्जेनित्सिन मानती थी कि मार्क्सवाद लेनिनवाद ने ही गुलाग का नैतिक आधार तैयार किया। ये हमें एक तरह से चेतावनी देता है कि किसी भी ऐसी विचारधारा से सावधान रहे जो इंसानों को सिर्फ वर्ग, नस्ल या दुश्मन में बांट दे और हिंसा को जायज ठहराए।
और दूसरा अहम मुद्दा जो मुझे लगा वो है झूठ की ताकत। पूरा सोवियत सिस्टम एक बहुत बड़े झूठ पर टिका था।
झूठे मुकदमे, झूठे इकबाल नामे, झूठे उत्पादन के आंकड़े, सब कुछ। सोल्जनिसिन दिखाते हैं कि जब झूठ संस्थागत बन जाता है तो वो पूरे समाज की नैतिकता को कैसे खोखला कर देता है। सच बोलना ही अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम बन जाता है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है तीसरा संदेश कि अच्छाई और बुराई की रेखा हर दिल से गुजरती है। कोई भी समूह या वर्ग पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। कैंप में जल्लाद भी थे और संत भी, और कई बार एक ही इंसान में दोनों पहलू दिखते थे। ये हमें अपनी और दूसरों की जटिलता को समझने की सीख देता है, और ये भी कि आसानी से किसी को खलनायक न बना दें।
लेकिन इतनी निराशा के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण भी दिखती है इस किताब में?
हाँ बिल्कुल, और वो है चौथा संदेश, मानवीय आत्मा का लचीलापन,
रिजिलियंस।
तमाम क्रूरता के बावजूद लोग प्यार करते थे, दोस्ती निभाते थे, कविताएं लिखते थे, प्रार्थना करते थे, और यहाँ तक कि विद्रोह भी करते थे। सोल्जिनिसिन दिखाती हैं कि शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन आत्मा अगर चाहे तो वो आजाद रह सकती है और दुख में भी अर्थ खोज सकती है।
एक और बात जो शायद अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, इस समय आम लोगों की क्या भूमिका थी? क्या वो बस शिकार थे?
ये पांचवा महत्वपूर्ण संदेश है, आम लोगों की मिलीभगत, कॉम्प्लिसिटी। गुलाग सिर्फ कुछ नेताओं या गार्ड्स की वजह से नहीं चला, लाखों छोटे अधिकारी, पड़ोसी, जज और वो आम नागरिक जिन्होंने डर या उदासीनता के कारण आंखें मूंद लीं, वो भी इस सिस्टम का हिस्सा थे। यह हमें सिखाता है कि अन्याय होते देखकर चुप रहना भी एक तरह की भागीदारी है, भले ही अनजाने में हो।
और आखिर में वो याद रखने वाली बात, स्मृति का महत्व।
हाँ, छठा संदेश, जब सत्ता इतिहास को मिटाना चाहे, झूठ फैलाना चाहे, तो याद रखना एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाता है। सोल्जनिसिन की किताब उन लाखों गुमनाम पीड़ितों के लिए एक स्मारक है। ये कहती है कि अपने अतीत का ईमानदारी से सामना किए बिना कोई देश या समाज स्वस्थ भविष्य नहीं बना सकता।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो सचमुच में यू नो झकझोर देती हैं। एक जो मुझे हमेशा याद रहती है वो है, धन्य हो तुम जेल मेरे जीवन में आने के लिए। ये सुनने में कितना अजीब, कितना विरोधाभासी लगता है,
है ना? पहली बार पढ़ने पर तो धक्का लगता है, लेकिन सोल्जनिसिन का मतलब ये नहीं था कि जेल कोई अच्छी चीज है, बिल्कुल नहीं। उनका आशय शायद ये था कि जेल की जो कठोरता थी उसने उनके जीवन से सारे दिखावे, घमंड और फालतू चीजें छीन ली। इसने उन्हें जीवन के असली सवालों से, मौत, आत्मा, अच्छाई, बुराई, उनसे सीधे टकरा दिया। उन्हें वहां एक ऐसी आध्यात्मिक स्पष्टता मिली जो शायद बाहर की आरामदायक जिंदगी में कभी नहीं मिलती। ये एक तरह का शुद्धिकरण था, हाँ, बहुत ही दर्दनाक शुद्धिकरण।
और वो पंक्ति जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, अच्छाई और बुराई को विभाजित करने वाली रेखा राज्यों से या वर्गों के बीच या राजनीतिक दलों के बीच से नहीं गुजरती, बल्कि हर मानव हृदय से और सभी मानव हृदयों से होकर गुजरती है।
हाँ, ये शायद किताब का सबसे गहरा नैतिक सत्य है। ये उस पूरी सोच को ही नकार देता है कि बुराई कहीं बाहर है, किसी खास दुश्मन समूह में। नहीं, वो कहती है लड़ाई हमारे अंदर है। हर पल हमें चुनना होता है कि हम अच्छाई की तरफ खड़े होंगे या बुराई की। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है हर व्यक्ति पर।
एक और विचार जो बहुत सोचने पे मजबूर करता है, बुराई करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले ये विश्वास करना होता है कि वो जो कर रहा है वो अच्छा है। विचारधारा यही शैतानी को लंबे समय से वांछित औचित्य प्रदान करती है।
बिल्कुल, ये समझाता है कि कैसे साधारण लोग इतने भयानक काम कर सकते हैं अगर उन्हें यकीन दिला दिया जाए कि वो किसी महान उद्देश्य के लिए, किसी ऊंची विचारधारा के लिए ये सब कर रहे हैं, तो उनकी अंतरात्मा जैसे सो जाती हैं। वो खुद को बुरा नहीं बल्कि जरूरी काम करने वाला नायक समझने लगते हैं। ये दिखाता है कि आदर्शों के नाम पर कितनी आसानी से क्रूरता की जा सकती है। बहुत खतरनाक है ये।
और वो रूसी कहावत, सत्य का एक शब्द पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा।
हाँ, ये इस्तिकात के वजूद का, इसके मिशन का सार है। एक ऐसे सिस्टम में जो पूरी तरह झूठ की नींव पर खड़ा था, जहां सच बोलने की सजा मौत हो सकती थी, वहां सच को लिखना और फैलाना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध था। सोल्जनिसिन का मानना था कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अंततः सच की जो नैतिक शक्ति है उसके सामने टिक नहीं सकता। उनकी किताब खुद उस सत्य के एक शब्द का सबसे बड़ा प्रमाण है।
ये सब बातें मतलब आज भी उतनी ही सच लगती हैं, उतनी प्रासंगिक। इस किताब से हम आज की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली सीख तो मेरे ख्याल से यही है कि विचारधाराओं पर सवाल उठाना सीखें, उन्हें आंख बंद करके ना अपनाएं। कोई भी सोच, चाहे वो कितनी भी लुभावनी क्यों ना लगे, अगर वो लोगों को हम और वो में बांटती है, अगर वो नफरत फैलाती है, अगर वो कहती है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी तरीका सही है, तो उस पर शक करें, सवाल करें, अंधे भक्त न बने।
दूसरी बात शायद ये कि अपनी छोटी छोटी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें। जैसा सोल्जेनिट्सिन दिखाते हैं, बड़ी बुराई अक्सर छोटे छोटे समझौतों से, छोटी छोटी चूकों से बनती है। जब हम ऑफिस में कोई गलत काम होते देखते हैं और चुप रह जाते हैं, या किसी के बारे में अफवाह फैलाते हैं, या कहीं अन्याय देखकर मुंह फेर लेते हैं, तो हम भी अनजाने में उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं।
सच के साथ खड़ा होना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, मायने रखता है।
बिल्कुल। और तीसरा, इंसानियत की कद्र करें, हर इंसान की। गुलाग में इंसान को सिर्फ एक नंबर, एक संसाधन बना दिया गया था। हमें याद रखना होगा कि हर इंसान, चाहे वो हमसे कितना भी अलग क्यों ना हो, उसका सम्मान और गरिमा है। किसी को भी कीड़ा मकोड़ा या दुश्मन समझने की सोच बहुत बहुत खतरनाक है। और शायद मुश्किलों में भी उम्मीद न छोड़ना, हिम्मत बनाए रखना। सोल्जेनिट्सिन की कहानी दिखाती है कि सबसे भयानक हालात में भी इंसान टिक सकता है, और सिर्फ टिक ही नहीं सकता बल्कि अंदर से मजबूत भी बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि अपनी परेशानियों को सिर्फ बोझ ना समझें, बल्कि उनसे कुछ सीखने और आगे बढ़ने का मौका भी देखें।
और आखिर में सच और याददाश्त को जिंदा रखें। आज का दौर, जिसे पोस्ट ट्रूथ कहते हैं, जहां सच को तोड़ना मरोड़ना इतना आम हो गया है, वहां सच बोलने और सच सुनने की हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। और अपने इतिहास को, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, याद रखना जरूरी है, ताकि हम वही गलतियां ना दोहराएं।
इस सारी बातचीत के बाद, अगर आपको एक चीज चुननी हो जो इस किताब से आपके जहन में सबसे ज्यादा रह गई, सबसे ज्यादा असर किया जिसने, तो वो क्या होगी?
मेरे लिए शायद सबसे गहरा एहसास ये है कि विशाल बुराई कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वो मानवीय व्यवस्थाओं और दिलों के भीतर छिपी एक संभावना है, जिसे विचारधारा, डर और नैतिक उदासीनता जगा सकती है। ये किताब हमें दिखाती है कि सभ्यता और इंसानियत की परत कितनी पतली है, और उसे बचाए रखने के लिए हमें लगातार सचेत और सक्रिय रहना होगा। ये सिर्फ सोवियत संघ की सच्चाई नहीं बताती, ये मानवीय स्थिति पर, इंसान के अंदर की लड़ाई पर एक गहरा चिंतन है, और सत्य की शक्ति का एक स्मारक है।
और मेरे लिए शायद वो जेल को धन्यवाद देने वाली बात है, ये विचार कि भयानक पीड़ा भी इंसान को तोड़ नहीं सकती, बल्कि उसे गहरी समझ दे सकती है, उसे बदल सकती है।
बिल्कुल।
और ये कि सच बोलना, याद रखना, लिखना, ये सब कितने शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं झूठ और दमन के खिलाफ। ये किताब सिर्फ अतीत का अंधेरा नहीं दिखाती, बल्कि मानवीय आत्मा की जो अदम्य शक्ति है, उसकी रोशनी भी दिखाती है। और ये सवाल छोड़ जाती है कि आज हमारी दुनिया में वो कौन से अदृश्य गुलाग हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे या देखना नहीं चाहते।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।